प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और मेरे प्रियो, हमने पिछले अध्ययन में पत्रस के द्वारा कही गई उन उद्धार की बातों को देखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचनों में से सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन के लिए कार्यकारी होने पाए, उनके जीवन से बोलें और बातचीत करने पाए। आप मुझसे बातचीत करें, मुझे सिखाएं और हम सबों को आशीषित करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए, उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। फिर से बार हम सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जब हम पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2, 3 और 4 में पढ़ते हैं, पत्रस परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु के कष्टों के बारे में चर्चा करता है। इन अध्यायों में हम देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में कष्टों से क्या लाभ होता है। कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं, इसे हम अध्याय 2 में देखते हैं। कष्ट मसीही आचरण उत्पन्न करते हैं, इससे हम अध्याय 3 में देखते हैं। कष्ट परमेश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन उत्पन्न करते हैं, इससे हम अध्याय 4 में देखते हैं। तो आइए हम देखें, कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं। अलगाव या प्रभु के लिए जीने में एक खतरा है। मनुष्य प्रायः 2 सीमाओं में से एक सीमा पर आगे बढ़ता है, या यूं कहें कि एक सीमा पार कर जाता है। मेरे विचार में ये दोनों सीमाएं ही धर्मशास्त्र में मेल नहीं खाती हैं। एक में तो यह माना जाता है कि मानव जीवन को मात्र एक नई दिशा की आवश्यकता है, उसे एक उद्देश्य और सुधार की आवश्यकता होती है। इस विचार के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में कोई खोट नहीं है, अतः मनुष्य को उसकी अद्भुत क्षमता के प्रति जागृत किया जाना चाहिए, उसकी बुद्धि, उसका नैतिक स्वभाव उजागर करना चाहिए। यानी हम यूं कहें कि उसकी बुद्धि, उसका नैतिक स्वभाव उजागर करना है कि वह प्रभु के लिए जी पाए। यह मसीही जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। दूसरी सीमा की नया जन्म पाकर मनुष्य को अलौकिक अवस्था प्राप्त होती है और वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक परमेश्वर उसके जीवन में जो भी करना आवश्यक है या अवश्य है उसे पूरा करे। ऐसे लोग बड़ी पवित्रता का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें मैं फूले हुए मेंढक के सदृश देखता हूँ। वे परिपक्व सामान्य प्रेमी मसीही जन कभी नहीं बन पाते हैं। मेरे मित्रों, अध्याय 2 अति स्पष्ट करेगा कि हमें नए जीवन यानी कि अविनाशी वचन से प्राप्त जीवन के कारण नया स्वभाव भी रखना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसका निर्वाह करना है। हम उसके संबंध में लाए गए हैं जिसे हम बिना देखे प्रेम करते हैं। पत्रस ने तो उसे देखा था और वह उससे प्रेम भी करता था, यद्यपि हमने उसे देखा नहीं है। पवित्र आत्मा उससे हमारे लिए वास्तविक बनाता है जिससे कि हम उसे प्रेम भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब आपने नया जन्म पाया था तब वह कैसा मधुर एवं अद्भुत समय था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुरिन्थ के विश्वासी सांसारिक हो गए थे और मसीह के लिए उनका पहला प्रेम ठंडा पड़ गया था। परमेश्वर ने इसराइलियों से भी यही शिकायत की थी। उनकी बेबीलोन बंधुआई से पूर्व यर्मिया 2 अध्याय उसके 2 पद में कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली। इसराइल ने मिस्र से निकलने के बाद लाल सागर पार करके अपना प्रेम प्रकट किया और परमेश्वर के लिए भजन गाया जिससे हम निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। परंतु शीघ्र ही वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर को स्मरण है कि इसराइली क्या हैं। मेरे प्रियो, सच्चा अलगाव आपके नए जन्म की सच्चाई पर निर्भर करता है। अब आप में नया स्वभाव है और आप प्रभु यीशु के प्रेम में हैं। उसके लिए आपका प्रेम आपको विवश करता है कि आप उसे प्रसन्न करें। परमेश्वर के उद्देश्य में महान लक्ष्य यह है कि मनुष्य उद्धार पाए, दंड और आग की झील से ही नहीं आज के संसार से भी। वह उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है, स्वर्ग के लिए ही नहीं परंतु प्रभु यीशु के मन के लिए। क्रूस पर प्रभु यीशु के काम ने परमेश्वर और हमारे मध्य पाप द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हमारा भविष्य परमेश्वर की महिमा के साथ ज्योतिर्मय है और हम मुक्ति कार्य के मूल्य में अवस्थित किए गए हैं। हमें नया जन्म मिला है और शैतान भी उसे बदल नहीं सकता है। परंतु मेरे मित्रों, हम इस पृथ्वी पर अपना मसीही जीवन कैसे निर्वाह कर रहे हैं, अपने साथियों और प्रभु यीशु के साथ हमारा आचरण कैसा है। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए, हम परमेश्वर से हर काम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कुछ काम उसने हमारे लिए भी रखे हैं कि हम उसे करें। पहले तो हमें कुछ बातों का त्याग करना है। पौलुस इफिसूस की कलीसिया को लिखे पत्र में इन बातों को वस्त्र उतारने जैसा कहता है। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 22 और 25 पद में लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरे प्रियो, कुरंत की कलिसिया को भी वह यही बात लिखता है, परंतु एक भिन्न उदाहरण दे करके। पहला कुरंथियों के पत्री 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मेरे प्रियो, इसराइल फसा और अखमीरी रोटी के पर्व में खमीरी रोटी नहीं खाते थे, अर्थात वह पहले जैसा जीवन नहीं जीता था। वह एक अलग स्थान पर एक अलग रोटी खाता था, यह उसके लिए उन्नति का चिन्ह था। इसी प्रकार पौलुस कुरंथ की कलीसिया से कहता है कि जब वे मसीह को ग्रहण कर चुके हैं तब उन्हें पुराने खमीर अर्थात बुराई और दुष्टता का त्याग करना है। हम इस जीवन में सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम में पुराना स्वभाव है। मेरे प्रियो, यदि हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, मसीह में विश्वास किया है, तो हमारा भी स्वभाव पुराने खमीर के जैसा नहीं होना है। आगे वह कहता है, सब प्रकार का बैर भाव। अब बैर भाव क्या है? इसकी सर्वोत्तम परिभाषा जो मैंने खोजी है वह है क्षमा करने की आत्मा। मित्रों, क्या आप मन में कड़वाहट लिए हुए हैं? यद्यपि आप नए जन्म और प्रभु यीशु से प्रेम करने की गवाही देते हैं, दावा करते हैं, आपको देखने वाला इस अंतर को भांप नहीं पाएगा जब तक कि आप में बैर भाव और जमा हुआ क्रोध रहेगा। इसलिए कहता है छल। छल का अर्थ है बदला लेना या किसी पर प्रभाव डालना। हनन्याह और सफीरा ने दान का दिखावा करके छल किया था। हमारा पुराना स्वभाव इस काम में प्रवीण है। जेबी लाइटफुट छल की परिभाषा देते हैं, विषाक्त स्वभाव जो किसी को हानि पर उतारू हो जाए। तब हम आगे देखते हैं कपट और डाह और निंदा। कपट का अर्थ है जो आप नहीं है वह दिखाना, निंदा करना अर्थात किसी की बुराई करना। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे एक भूखा बच्चा दूध के लिए विचलित हो जाता है, रोता है, वैसे ही विश्वासी को भी परमेश्वर के वचन के लिए विचलित हो जाना है। लेकिन दुख की बात कि आज हम परमेश्वर के वचन के लिए विचलित नहीं होते हैं। मुझे याद है कि मेरी बहन अपने नवजात शिशु को लेकर हमारे घर हमारे साथ में रहने के लिए आई, क्योंकि उसका पति दूर कहीं नौकरी पर गया था। कभी कभी उसे दूध की बोतल देने का काम मुझे सौंपा जाता था। दूध की बोतल देकर वह शिशु हाथ पैर फेंकना आरंभ कर देता था, क्योंकि उसे दूध की बोतल देखने में बड़ा मजा आता था। उसे पता है कि अब उसे दूध मिलने वाला है, और उसे देखकर मैं सोचता था काश मेरी कलीसिया परमेश्वर के वचन के लिए ऐसी अधीर हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन की भूख के बिना आप प्रभु यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आप परिपक्व विश्वासी नहीं बन पाएंगे। आप केवल और केवल शिशु ही रहेंगे। निसंदेह एक शिशु और एक वयस्क मनुष्य हैं, परंतु दोनों विकास एवं उन्नति में अलग अलग स्तर पर हैं। शिशु को बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। विश्वासी कैसे बढ़ता है? वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके बढ़ता है, परमेश्वर के वचन से हटकर विकास नहीं करता। मुझे अनेक कलीसियाई सेवकों से पत्र मिलते हैं, वे लिखते हैं कि वे शिशुओं की दाई हैं। एक पास्टर ने लिखा, मैं अपने आत्मिक शिशुओं की हवा निकालने में व्यस्त हूं। इन आत्मिक शिशुओं को बढ़ाना है कि उन्हें पास्टर की आवश्यकता न हो, कि वह उनकी पीठ सहलाकर हवा निकाले। यदि उन्हें परमेश्वर के वचन की लालसा है तो उन्हें विकास करना होगा। मेरे प्रियो, यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन का निर्मल दूध परमेश्वर का समग्र वचन है। हम यदा कदा एक बाइबल पद निकाल करके मन को समझाने के लिए पढ़ते हैं तो उससे हमारा विकास नहीं होता है। हमें विकास के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ना है। हमें परिपूर्ण एवं संतुलित आहार की आवश्यकता है। निसंदेह हम दूध से आरंभ करते हैं, परंतु एक दिन हमें ठोस आहार की आवश्यकता होती है। आपको आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन ही लेना है, तब जाकर के आप मसीह की संगति में विश्वास में मजबूत होते हैं। पहला पत्रस की पत्री 2:3 में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उद्धार पाने के समय आप परमेश्वर के वचन की भूख लेकर जन्म पाते हैं। मेरे प्रियो, जन्म के बाद जब मेरा बेटा घर लाया गया तब वह निप्पल चूसना जानता था। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कि उसे दूध पीने पर पाठ सिखाऊं। इसी प्रकार हमें मसीह में आत्मिक शिशुओं को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन्हें पोषण के लिए परमेश्वर का वचन सुनाना है। अब वास्तव में अलगाव क्या है? अलगाव का अर्थ है शरीर के कामों का त्याग। विश्वासी प्रायः सोचते हैं कि उन्हें संसार से अलग हो जाना चाहिए। हम संसार में रहते हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, परंतु इस संसार में हमें रहना तो होगा ही। मेरे प्रियो, मैं आपको इस भ्रम का एक उदाहरण देता हूं। मैं एक प्रचारक को लेकर आधी रात तक चक्कर काटता रहा कि कोई ऐसा होटल मिले जहां वियर नहीं दी जाती है। यह उसकी अलगाव की समझ थी। अंत में हमें एक ऐसा होटल मिल ही गया और वहां खाना खाकर हम दोनों बीमार हो गए। मैं तो वहां कभी खाना नहीं खाता। मैंने उससे कहा, इस घटना के बाद मैं तो किसी भी साफ सुथरे होटल में खाना खा लेता। आवश्यक नहीं था कि मैं बियर पीता। अलगाव का अर्थ यह नहीं कि आप बार में जाकर के खाना ना खाएं, परंतु आप उसे ना छुएं। हमें जिन बातों से अलग होना है वे हैं बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा। इस अलगाव के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। इस अलगाव के बिना हम मसीही परिपक्वता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पहला पत्रस 2:4 में वह कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। ध्यान दीजिए, उसके पास आकर जीवता पत्थर है। हम बेतलहम के शिशु के पास नहीं आते हैं, हम शिशु के समान एक जीवित पत्थर के पास आते हैं। यह जीवित पत्थर प्रभु यीशु है। पत्रस के अंगीकार के बाद यीशु ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 16:18 में, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस यहां स्पष्ट करता है कि जीवित पत्थर वह नहीं परंतु प्रभु यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार 21:42 में भी प्रभु यीशु स्वयं को पत्थर कहता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह भजन संहिता 118 का संदर्भ है। अब वह अपने बारे में कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कलीसिया का वह नींव का पत्थर है, वह आज एक पत्थर है। पहला कुरिन्थियों 3:11 में पौलुस लिखता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी हां, आप जब पापी होकर उस पत्थर पर गिरते हैं तब आप चकनाचूर हो जाते हैं, तथापि आपके चूर चूर होने पर भी वह पत्थर आपकी नींव बन जाता है जो आपका उद्धार करता है। परंतु यदि आप उस पत्थर का इनकार करते हैं तो आप उस पत्थर के पार नहीं जा सकते। दानियल नबी की पुस्तक 2:34 में दानियल ने देखा कि एक पत्थर जो हाथों से नहीं काटा गया था उस मूर्ति पर गिरा। यह पत्थर दंड का पत्थर है जो पृथ्वी पर प्रहार करेगा। यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है, वह इस पृथ्वी पर दंड का पत्थर होगा। यहां प्रभु यीशु का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है मेरे प्रियो, वह कुछ और भी है जो अद्भुत है। आइए हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 2:5 में, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। मेरे प्रियो, हम जीवते पत्थर कैसे हैं? 1 पत्रस 1:23 में हम देखते हैं, लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। आपको स्मरण होगा कि पत्रस ने प्रभु यीशु से कहा था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू पत्रस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, पत्रस का अर्थ है चट्टान। प्रभु यीशु नींव का पत्थर है और पत्रस कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम सब पत्रस के समान छोटे छोटे पत्थर हैं जो आत्मिक घर बनाते हैं। हम नया जन्म पाकर परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमें परमेश्वर के भवन में चुन दिया जाता है, अर्थात हम उसमें जुड़ जाते हैं। पौलुस भी भवन का रूपक काम में लेता है। इफिसियों की पत्री 2:19-22 में वह कहता है, तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर एक मंदिर बना रहा है, जीवित मंदिर। हम जो पापी रूप में आकर उसकी दया के लिए उस पर गिरते हैं और उद्धार पाते हैं, वह हमें इसलिए मंदिर बनाना चाहता है या मंदिर का भाग बनाता है कि वह प्रभु यीशु नींव के पत्थर पर है और वही निर्माण कर रहा है कि हम उसमें चुनते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तब हम आगे देखते हैं, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यह पत्री एक और चित्रण प्रस्तुत करती है, पवित्र याजक गण। जी हां, सब विश्वासी जीवित पत्थर हैं, पवित्र याजक हैं। पत्रस कहता है, राजसी याजक। याजक होने के नाते हमें प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर को ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं। आपका आर्थिक दान भी आत्मिक बलिदान है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मनुष्य पैसों को आत्मिक क्यों नहीं मानता है। यह तो पैसों के उपयोग पर निर्भर करता है। आप स्वयं को भी परमेश्वर को दे सकते हैं, यह भी आत्मिक बलिदान है, और इसीलिए पत्रस कहता है कि हमें उसमें बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करें कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, आत्मिक जीवन जी सकते हैं। हमें शिशु नहीं परंतु परिपक्व होना है, एक ठोस चीज को खाना है, और वह परमेश्वर के वचन के द्वारा से होता है। मुझे आशा है कि आप अवश्य मेरी बातों को समझ रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया है और आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे।
संदेश लेकर
करिए।